ओम शांति। तो अभी का जो सत्र है वो है फूड फॉर द माइंड, फूड फॉर द सोल। तो आत्मा के लिए खुराक क्या है, आत्मा के लिए खुराक क्या है, मन के लिए खुराक क्या है, क्या है? थॉट्स, गुड ब्यूटिफुल थॉट्स, या कहेंगे ज्ञान, विजडम। तो ज्ञान का जो ABCD है उसमें ए पहला अक्षर वो है अपने आप को जानना। इंसान तो आज दिख रहा पर जमीर कहीं गायब है, धन तो बहुत है पर खुशी कहीं गायब है, कार्य तो हो रहा पर ईमान कहीं गायब है, स्पर्धा की होड़ में तेरी पहचान ही कहीं गायब है, तेरी पहचान ही कहीं गायब है। तो अपने आप का परिचय, अपने आप को अपने आप से मिलाने के लिए हमारे बीच में रूबरू आदरणीय शीलू बहन उपस्थित है। मैं बहन से निवेदन करती हूँ कि आप शीलू बहन का इस मंच पर स्वागत करेंगे फूलों से, और आप सभी तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आदरणीय शीलू बहन, आप राज्यों की वरिष्ठ प्रशिक्षिका हैं। 1976 से इस विद्यालय के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में होने वाले राजयोग शिविरों का आप संचालन करते आ रहे हैं। 11 वर्ष के डेलिकेट एज में इस विद्यालय के संपर्क में आप आए और सन 1969 से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस विद्यालय के जो फाउंडर है प्रजापिता ब्रह्मा और इस विद्यालय की पहली मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती की आपने रूबरू पालना ली है। आपके प्रवचन ZTV, सोनी टीवी जैसे अनेक प्रसिद्ध चैनलों पर प्रसारित होते रहे हैं और अभी वर्तमान समय पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी आप आते रहते हैं। आपकी उपमा चंद पंक्तियों में हम सुनाएंगे। कला और गुणों का अनोखा संगम है आप, कला और गुणों का अनोखा संगम है आप, ज्ञान वीणा वादिनी श्री सरस्वती है आप, विनम्रता और दया से भरपूर हो आप, शिव सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा हो आप, ज्ञान गंगा हो आप। आपने सुबह सुना एक गीत, आईना साफ किया तो साफ नजर मैं आया। तो अपनी पहचान, अपने आप को जानना, इस विषय के गहराई में हमें आदरणीय शीलू बहन लेंगे।
ओम शांति। सभी एक साथ कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस शांतिवन परिसर के भव्य डायमंड हॉल में हमारे तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। गति, सुरक्षा एवं आध्यात्मिकता, इस विषय को लेकर यहाँ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। बहुत ही सुंदर विषय है। हमें गाड़ी की तो स्पीड चाहिए ही और साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। दोनों का आपस में अगर गहरा संबंध हो स्पीड भी हो और सुरक्षा भी हो तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होंगे। लेकिन इन सब के लिए आध्यात्मिकता वो कड़ी है जो दोनों को मिला सकती है, जिसमें गति भी हो और सुरक्षा भी हो। लेकिन आध्यात्मिकता क्या है वो समझने की जरूरत है। आध्यात्मिकता केवल कर्म कांड, पूजा पाठ, जप तप, हवन, तीर्थ यात्राएं यही नहीं है, लेकिन इन सबसे ऊंचा उठकर अंतर की गहराइयों में जाने की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस जगत में, आखिर मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहाँ है और उसके लिए करना क्या है, ये है खुद के बारे में प्रश्न जिनके उत्तर आध्यात्मिकता देती है। फिर ईश्वर के बारे में प्रश्न, ईश्वर कौन है, वो कहाँ है, क्या है मेरा उनसे संबंध, कैसे मैं उनसे मिल सकता हूँ, क्या मुझे प्राप्ति होगी उनसे, आदि आदि कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं ईश्वर के बारे में। वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है ईश्वर के बारे में। ये सब आध्यात्मिकता के द्वारा जवाब मिलते हैं। फिर तीसरा विषय है आध्यात्मिकता का, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, हानि लाभ ये सब क्या है, और इन सब में हम स्थित प्रज्ञ कैसे रहें, जो चाहे मान मिले या अपमान हो, चाहे महिमा हो या ज्ञानी हो, चाहे हार हो या जीत हो, उसमें हम अपनी स्थिति को, अपनी मानसिक एकाग्रता को बनाए रखें, ये भी एक बहुत बड़ा विषय आध्यात्मिकता का है। और चौथा विषय आध्यात्मिकता का है ये समय क्या है, समय क्या, कभी ऐसा समय था जब समय ही नहीं था, या समय सदा से है, क्या ऐसा भी कभी समय आएगा जब समय ही नहीं होगा, ये भी एक प्रश्न है। तो समय जिसको हम कहते हैं काल चक्र, वो कैसे ये चक्र फिरता है, काल अर्थात समय, काल अर्थात मृत्यु, लेकिन ये एक ऐसा काल चक्र है जिसमें आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है वो अनंत काल से चली आई है। इस शरीर से पहले भी थी, इस शरीर के बाद भी रहेगी। इस शरीर में आना तो केवल एक पड़ाव है, जैसे कोई यात्री एक लंबी यात्रा पर निकलता है तो बीच बीच में कई पड़ाव आते हैं, रास्ते में बीच में रुकते हैं, किसी न किसी कारणवश, तो ये जीवन भी एक पड़ाव है और यात्री तो बहुत लंबे समय से यात्रा करता आया है। तो कैसे ये यात्रा चलती है ये समझना भी आध्यात्मिकता है, और उसके साथ है एक अंदर की यात्रा, बाहर की यात्रा को तो हम जानते हैं, लेकिन एक अंदर की यात्रा, अंदर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे अंदर जो उमंग उत्साह आता है, कई प्रकार की वेदनाएं आती है, ये सब कुछ जो अंदर में चलता है वो भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। लेकिन इस दुनिया को हम कैसे समझें, उसके लिए आध्यात्मिकता एक बहुत सुंदर मार्ग है। तो सब धर्मों से ऊपर उठकर जब हम आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचते हैं, तब हमें महसूस होता है कि ये पूरा संसार एक ईश्वर का परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, तो हम सब हदों से निकलकर बेहद में चले जाते हैं। तो वो ऐसी यात्रा है जो हमें हदों से निकाल बेहद में ले जाती है। तो कौन है ये यात्री और कैसे वो हद से निकल बेहद में जा सकता है, एक अंतर की यात्रा, एक ऊपर की यात्रा, वो कौन सी यात्रा होती है? अंतरिक्ष में तो जाते हैं, चंद्रमा तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मंगल ग्रह तक भी लक्ष्य है पहुंचने का, लेकिन उसके पार भी कुछ है जो पांच तत्वों से भी पार है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चांद, सितारे, ये पूरा ब्रह्मांड, इनसे भी कुछ पार है। उस तक पहुंचना ये भी आध्यात्मिकता है। तो हम अंतर की भी यात्रा करेंगे और ऊपर की भी यात्रा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात खुद को पहचानना, मैं कौन हूं। सदियों से ये प्रश्न चला आ रहा है, ये आज का प्रश्न नहीं है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स, दर्शन शास्त्री ये प्रश्न करते गए, मैं कौन हूं। क्या हम अपने आप को नहीं जानते हैं? आज हम किसी से पूछते हैं आप कौन हैं, एक छोटे बच्चे से भी पूछेंगे वो अपना नाम बता देगा, फिर पापा का नाम क्या है वो भी बता देगा, कहाँ रहते हो ये भी बता देगा, क्या पढ़ते हो ये भी बता देगा, अगर उसे अच्छी तरह सिखाया गया है तो। तो वो परिचय तो छोटा बच्चा भी दे सकता है, लेकिन जो सदियों से प्रश्न चला आ रहा है, मैं कौन हूं, ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो अभी तक एक पहेली बन गया है। क्या हम सचमुच जानते हैं हम कौन हैं? दुनिया के आगे जब हम जाते हैं तो अपना बहुत अभिमान दिखाते हैं, हम सेठ हैं, साहूकार हैं, धनवान हैं, पुत्रवान हैं, बुद्धिवान हैं, सुंदर है, न जाने क्या क्या अभिमान दिखाते हैं। लेकिन जब भगवान के सामने आते हैं तब हम अपना परिचय बिल्कुल उसके विरुद्ध देते हैं। और क्या परिचय देते हैं अपना? मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दास हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ, मूरख हूँ। जितने नीच से नीच शब्द होते हैं वो अपने लिए हम भगवान के आगे कहते हैं और दुनिया के आगे कुछ और कहते हैं। तो भगवान के आगे कुछ और, दुनिया के आगे कुछ और, तो हम कौन हैं? हम तो वही होने चाहिए जो भगवान के आगे भी हो और दुनिया के आगे भी हो। इसलिए कहा जाता है कि हम अपने आप को सचमुच नहीं जानते हैं। अगर जानते होते तो ये बहुरूप नहीं होता हमारा। सत्य यही कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है जो स्थिर हो, जो एक हो। अगर अनेक बातें हैं तो सत्य उसमें छिप जाता है। तो क्या है सत्य, कौन है हम? तो मेडिटेशन के जरिए हम अपने आप को पहचान लेते हैं, आध्यात्मिकता के जरिए हम अपने आप को पहचान लेते हैं। क्योंकि आध्यात्मिकता में मेडिटेशन, ध्यान ये समाविष्ट है। लेकिन ध्यान के बारे में, जिसको हम योग कहें, उसके बारे में भी आज दुनिया में कितने मत मतांतर है। कई योग को केवल शारीरिक आसन ही मानते हैं, उनको ही योग कहा जाता है ऐसे मानते हैं, क्योंकि उनकी यही धारणा है कि पहले शरीर को तंदुरुस्त रखा जाए फिर मन को शून्य बनाया जाए, और इसी को वो ध्यान समझते हैं। पर वास्तव में अगर देखा जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बड़ी बात कही है, WHO के मुताबिक 80 से 90 प्रतिशत शरीर के रोग मन के कारण है। इसीलिए कहा साइकोसोमेटिक डिजीजेस, जो मन के कारण उत्पन्न होते हैं, मन में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो आगे आती है, जिसके परिणाम स्वरूप तनाव, चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, दुश्मनी, न जाने क्या क्या मनोरोग जो मन में उत्पन्न होते हैं, उनका डायरेक्ट असर शरीर पर पड़ता है। तो कैसे हमें पहले मन को सुधारना है, और मन को अगर हमने सुधार लिया तो 80% जो शरीर के रोग है ना, वो आएंगे ही नहीं, पहले से दूर हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं। साइकोसोमेटिक है ना, पहले साइको है, मनोविज्ञान, मन की चिकित्सा, और फिर शरीर की। तो इस मन को समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे तन को समझते हैं ना फिजियोलॉजी में, कहां एक एक अंग है, फिर उसकी एक्सरसाइज, जो कुछ भी हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन मन को भी हमें समझना होगा। तो मन को हम कैसे समझेंगे, क्या है मन? हम तो यही मानते आए हैं कि मन तो एक घोड़ा है, वो तो इतना चंचल है कि उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। मन ये है, मन वो है, न जाने क्या क्या मन के बारे में हमने सोच लिया। अर्जुन ने भी यही शिकायत की भगवान को, हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन ही सब पाप कराता है। लेकिन ये मन है क्या चीज, क्या हम इसको अपने वश कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो जरूर हम अपने जीवन को भी अपने वश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले खुद को पहचानना होगा, और योग हमें सबसे पहले यही पहचान देता है। तो योग कुछ शारीरिक क्रियाओं का दूसरा नाम नहीं है। योग तो एक अंतर की एक यात्रा है। योग की अगर हम परिभाषा लें तो शाब्दिक परिभाषा कोई बड़ी चौड़ी नहीं है, जोड़ ये योग का अर्थ है। संस्कृत के युज शब्द से निकला है ये शब्द योग, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलना, एक मिलाप है, एक संबंध है। जैसे योग का विरुद्ध शब्द है वियोग, और वियोग का अर्थ समझना और सहज है। वियोग माना बिछड़ना, दूर जाना, एक दो से अलग होना। तो जहां वियोग माना अलग होना, उसकी भेंट में योग माना मिलना, जुड़ना, एक होना। तो योग के शाब्दिक अर्थ को समझना मुश्किल नहीं है, और जहां योग की बात है वहां हम कितने प्रकार के योग देखते हैं संसार में। आप जहां से आए वहां से वियोग हुआ, और जहां आए यहां से योग हुआ, वहां से संबंध कटा और यहां आए यहां संबंध जुड़ा। स्थूल रीति से भी हम योग देखते हैं, दो चीजों को जोड़ते हैं वो भी योग है। मानसिक रीति से भी योग है, हम जिसको याद करते हैं उसके साथ हमारा योग है। तभी तो हम कहते हैं जब किसी को बहुत याद करते हैं मान लो, और वो व्यक्ति उसी सब वक्त आ जाता है, मान लो पहुंच जाता है, तो हमारे मुख से अनायास ये शब्द निकलता है, अरे क्या योग था मेरा, अभी अभी हमने आपको याद किया और आप आ गए। तो योग अर्थात याद, हमारी टेलीपैथी, हम जिसको याद करते हैं उस तक मेरी याद पहुंचती है, ये भी एक योग है। लेकिन जो तीसरा स्तर है योग का, वो सबसे ऊंचा है, और वो है आध्यात्मिक स्तर, जिसमें आत्मा का योग परमात्मा से होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये सबसे ऊंचा योग है। और उस योग या मिलन के लिए जो ऊर्जा काम आती है वो भी मन ही है। इसलिए मन को समझना बहुत जरूरी है। तभी तो अर्जुन को भगवान ने कहा, ही अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ। और अर्जुन ने यही शिकायत की, ये मन लगता नहीं। तो क्यों नहीं लगता वो भी कारण बताया। सबसे बड़ा कारण है यह देह का अभिमान, ये एक रुकावट बनता है। जैसे हम दो तारों को जोड़ते हैं ना, तो रबर को हटाना पड़ता है। बिना रबर हटाए हम तार को जोड़ेंगे तो करंट पास नहीं होगा। हम दूसरा भी रूप देख सकते हैं, हम रेडियो ऑन करते हैं और कोई रेडियो स्टेशन चाहिए, वहां से साउंड एनर्जी हम अपने रेडियो पर रिसीव करना चाहते हैं, परंतु वो आवाज जो उस रेडियो स्टेशन से आती है, वो आवाज हमारे रेडियो तक कैसे पहुंचेगी? वो हजारों मील की दूरी पर भी हो सकता है वो रेडियो स्टेशन, लेकिन हम अपने रेडियो पर सुन सकते हैं। उसके लिए हमें ट्यूनिंग करनी पड़ती है, वही वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, मीटर बैंड, है ना भाई, ये रेडियो स्टेशन कौन से मीटर बैंड पर आता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो वो भी जरूर नोट करेंगे। तब हम अपने रेडियो रिसीवर पर वो सुई वहां रखते हैं, वो आवाज कैच करते हैं। तो ये भी एक योग है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, वो वेव्स पहुंचती है। अब तार का भी मिसाल दिया, बिजली घर न जाने कितना दूर होगा, लेकिन हमारे घर में वो बिजली पहुंचती है। कैसे पहुंचती है, बीच में माध्यम क्या बना, वो मीटर जो हमारे घर के बाहर होता है उसमें नोट होता जाता है कितनी बिजली मिली, और उसमें कभी कभी फ्यूज भी हो जाता है। बिजली नहीं आ रही है तो कहते भाई क्यों नहीं आ रही है, दूसरे के घर में तो है, हमारे घर में क्यों नहीं है। अगर सारी गली में नहीं है तो समझ सकते हैं बिजली घर से नहीं आ रही, पर उनके घर में है, मेरे घर में नहीं, तो इस गली में तो है लेकिन मेरे घर में नहीं है, इसका मतलब कुछ हमारे जो मीटर है उसमें फ्यूज उड़ गया होगा, ऐसे ही कहते हैं ना। तो फ्यूज को जोड़ना है, और ये फ्यूज को जोड़ना योग है। हम दूध में चीनी मिलाते हैं, दूध को मीठा करते हैं, लेकिन ये मीठा तब बने जब हम चम्मच से उसको घोलें। ऐसे ही डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, हो सकता है आपको मीठा न भी लगे, उसको मिलाना पड़ता है। ये मिलाना भी एक योग है। तो जिस प्रकार ये भौतिक रूप से हम योग समझते हैं, मानसिक रूप से भी हम सब योग करते हैं। हम जिसको भी याद करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, कोई घटना हो, कोई स्थान हो, कोई परिस्थिति हो, जैसे ही उसे याद किया, उसकी उसी वक्त उसका अनुभव होने लगता है। उसी वक्त चाहे वो घटना कितने समय पहले हुई हो, लेकिन आज वो मन पटल पर ऐसे वो दृश्य खड़ा हो जाएगा जैसे अभी हो रहा है। अब ये भी एक योग है, मन पहुंच गया एक सेकंड में। देर नहीं लगती है मन को कहीं भी पहुंचने में। सूरज तक भी पहुंच सकता है मन एक सेकंड में। सूरज से किरण आती है, प्रकाश की किरण इस धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। लाइट एनर्जी, लाइट वेव्स, उनकी स्पीड है 8 मिनट में वो पहुंचती है। हजारों लाखों मील तय करके वो किरण धरती पर पहुंचती है, 8 मिनट लगते हैं। लेकिन मन से सूरज तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? क्या होगी मन की गति? कितनी देर लगेगी मन से सूरज तक पहुंचने में? कितनी देर? 1 सेकंड। तो कितनी गति है मन की, माप सकते हैं? एक रॉकेट की गति भी माप सकते हैं, लेकिन मन की गति कैसे मापेंगे? इतनी शक्ति है मन की। इसीलिए चाहे कोई सुखद घटना हो, दुखद घटना हो, उसी वक्त जैसे याद किया वो अनुभव उसी वक्त होने लगता है। जैसे कई बार मन उदास होता है तो लोग पूछेंगे, क्या बात है, इतना उदास क्यों है? तो कहेंगे, कोई बात याद आ गई। वो बात याद आ गई, कोई ऐसी दुर्घटना थी, वो याद आते ही इसी वक्त, चाहे इस समय न वो स्थान है, न व्यक्ति है, न वो कोई घटना हो रही, कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, लेकिन उसी समय उदास हो जाते हैं। अब ये भी एक योग है। तो योग को समझना मुश्किल नहीं है, और उस हिसाब से हम सब योगी हैं, सब योगी हैं। आप सब हो योगी? जो समझते हम हैं योगी, हाथ उठाएं। समझा ना योग क्या है? तो सब योगी हो, लेकिन अभी आपको बनना है राजयोगी। योगी तो हो ही, तो राजयोगी कैसे बनेंगे? ये राजयोगी बनना, ये रॉयल फॉर्म ऑफ योग है, जिसकी परिभाषा बहुत सिंपल है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना, ये राजयोग है। और राजयोग एक आध्यात्मिक योग है, केवल शारीरिक क्रियाओं का ही नाम नहीं है योग। वैसे भी अष्टांग योग जब करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो यम और नियम आते हैं। यम नियम बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन उनको तो लोग ओवरलुक कर लेते हैं। फिर उसके बाद यम नियम के बाद आसन और प्राणायाम, ये दो चीजें हैं, उस पर तो ध्यान देते हैं, उसको महत्व देते हैं, लेकिन उसके बाद के जो चार है उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। वो कौन से? प्रत्याहार, इनवर्ड्स, गोइंग इनवर्ड्स, अपने आप को सिकोड़ना, अंदर जाना, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, फिर समाधि, सम हो जाना ईश्वर के साथ, उनका ध्यान करना। तो ये जो बातें हैं वो योग की वास्तव में बहुत बड़ी गहराई है। इसीलिए राजयोग को समझना ये आध्यात्मिक स्तर का योग है, और उसको अगर आपने समझ लिया तो आप सचमुच राजा बन जाएंगे। किसके राजा? सबसे पहले अपने इंद्रियों के राजा, दूसरों के राजा नहीं बनना है। अभी राजा ही चली गई है, राजा ही नहीं है इस समय दुनिया में कहीं भी। प्रजा का प्रजापरी जैसे राज्य है, कुछ देशों में होगा, बाकी तो प्रजा का प्रजापरी राज्य है। पर आप राजा बन सकते हैं। किसके? पहले अपनी इंद्रियों के राजा। आप अपनी इंद्री को जिस रूप से चलाना चाहो आप चला सकते हो, और नहीं चलाना चाहो तो आपके हाथ में है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, एक्सेलरेटर, गियर, ब्रेक, ये सब आपके हाथ में है, और आप उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हो। अगर नहीं कंट्रोल किया तो एक्सीडेंट होते हैं। अगर पूरा कंट्रोल है तो गाड़ी चलाना तो एक खेल है, इट्स अ स्पोर्ट। आजकल गाड़ी के भी स्पोर्ट्स होते हैं। पर अगर हमारा कंट्रोल छूट गया तो फिर तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। इसीलिए अपने इंद्रियों के भी हम राजा बने। हम जिस इंद्री को जहां जैसे चलाना चाहे हम चला सके, ये हमारे हाथ में हो। फिर हम अपने मन के भी राजा बन सके। मन में जो सोचना चाहे वो ही सोचे, ऐसे नहीं कि सोचना चाहते कुछ और सोच चलता है कुछ और। जो नहीं सोचना चाहिए वही सोचते हैं, और जो सोचना चाहिए वो सोच ही नहीं पाते हैं। अब ये भी मन भी वश में कहाँ है। तो मन के भी राजा बन जाओ, और फिर सबके दिलों के भी राजा बन जाओ, सबका दिल जीत सको। किसी को हराना ये बड़ी बात नहीं है, पर किसी का दिल जीतना ये बहुत बड़ी बात है। और अगर दिल सबका जीत सके तो आप विश्व को भी जीत सकते हो, सारी दुनिया को आप जीत सकते हो। कैसे? पहले अपने मन को जीतो। इसीलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। लेकिन मन जीते जगत जीत का मतलब ये नहीं है मन को मारना। मन हमारा दुश्मन नहीं है, मन तो हमारा बहुत बड़ा मित्र है। तो मन को जीतना माना, मन में हम जो सोचना चाहे वो ही सोचे, ये है मन को जीतना। मन हमारा सेवक बन जाए, जैसे ये इंद्रियां हमारी सेवक है ना, तो मन भी हमारा सेवक बन जाए, मन हमारे ऊपर राज्य न करे। लेकिन उसके लिए मन को समझना बहुत जरूरी है। तो राजयोग क्या है? उस सर्वोच्च से पहले मन लगाओ, उस परमात्मा से मन लगाओ, जो सर्वशक्तिमान है, उससे मन की तार जोड़ो। और राजयोग उसके लिए हमें बहुत अच्छी विधि बताता है, बहुत सरल विधि है, जो ऊंचे से ऊंची विधि है। क्योंकि कई समझते हैं परमात्मा तक पहुंचना ये जैसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की बात है। अब माउंट आबू की भी पहाड़ की चोटी है, माउंट आबू में ये अरावली श्रृंखला है, इनकी चोटी यहाँ माउंट आबू में है, गुरु शिखर कहते हैं, 6000 फीट की ऊंचाई पर है, उनसे भी ज्यादा होगी। लेकिन कोई अगर पहाड़ चढ़कर जाना चाहे तो कितना मुश्किल होगा। उसकी बजाय आज रोड बन गया है, चले जाओ गाड़ी में पहुंच सकते हो आप, 1-1.5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हो। तो राजयोग वो सही सर्वोच्च विधि, सरल विधि, सहज विधि देता है, जिससे हम अपने मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। और लगा के जो प्राप्ति हम करना चाहें वो प्राप्ति भी कर सकते हैं। क्या प्राप्ति हम चाहते हैं? सर्वोच्च प्राप्ति हम किसको कहते हैं? सर्वोच्च प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है धन कमाना, यश कमाना, मान कमाना, मर्तबा पाना, मकान जमीन जायदाद लेना, बहुत बड़ा पोजीशन लेना, यही सर्वोच्च प्राप्ति नहीं है। अगर सब कुछ हो जाए, सब मिल जाए, संसार के सारे पदार्थ, लेकिन फिर भी हम खाली के खाली रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, प्यार नहीं है, शक्ति नहीं है, कमजोर है, बाहर सब कुछ है, डर है, चिंता है, भय, ये सारे जो मनोरोग अगर हैं, तो बाकी सब कुछ हो जाए वो सब बेकार है। इसलिए सर्वोच्च प्राप्ति हम किसको कहेंगे? जहाँ सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, सद्भावना हो, दया हो, विवेक हो, और ये अगर है तो जीवन एक वरदान है, और ये अगर नहीं है तो जीवन एक अभिशाप है। हम जीवन अपना अभिशाप बनाना चाहते, कर्स बनाना चाहते हैं, या वरदान, गॉड ब्लेसिंग, ये बनाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो क्या है राजयोग, उसे समझना बहुत जरूरी है। राजयोग में क्या क्या प्राप्तियां होती है वो हम समझते हैं। सुनो, ये इसमें ना इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नरसिम्हा भाई, हाँ, राजयोग के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्तियां होती है वो अगर हम समझ गए ना, और वो प्राप्तियां हमें हो गई, तो हम महसूस करते हैं हमने अपने जीवन को धन्य बना दिया। जब हम कहते हैं कि ये मानव जीवन हीरे तुल्य है, पर हम इसे कौड़ी के बदले गंवा रहे हैं। क्यों गंवा रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते, जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते। और अगर जान गए तो ये जीवन हमारा धन्य हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि वास्तव में योगी किसे कहेंगे, योगी हम किसे कहेंगे। योगी, राजयोगी अर्थात जिसने अपने दृष्टि को बदल दिया हो, अपने विचारों को बदल दिया हो। एक परिवर्तन चाहिए, जस्ट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, बस एक अवेकनिंग जिसको हम कहते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा बलशाली व्यक्ति, बहुत ताकत वाला व्यक्ति, अगर वो सोया है, नींद में है, गहरी नींद में है, तो उस व्यक्ति को उस समय नहीं पता चलता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है। लेकिन वो जब जागता है तब उसे महसूस होता है कि मुझे इतनी शक्ति है। अब ये भी अंदर की जागृति चाहिए। तो राजयोग क्या है? जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण, अर्थात जिसको हम कहते हैं जीवन जीने की कला। जीवन तो सब जी रहे हैं, एक मच्छर मक्खी भी जीवन जी रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं वो जीवन जी रहे हैं। लेकिन केवल श्वास लेना ही तो जीवन नहीं है ना। इसीलिए जीवन जीना माना उसकी कला, जीवन जीना भी एक कला है, जिसमें हम अपनी स्थिति को इतना समतल बना सकें, जिस समतल स्थिति से हम हर कार्य कर सके, विदाउट रियली जिसको हम कहते हैं पश्चाताप किए। एक व्यक्ति रास्ते पर चलता हुआ भी गिर सकता है, गिरता है ना, कई बार गिरता है, चलते चलते पत्थर आ गया, कुछ ऊपर नीचे हुआ, गिर सकता है। पर दूसरा व्यक्ति वो रस्सी पर चलता है तो भी गिरता नहीं है, क्योंकि उसको चलने की कला है। और वो कला कैसे आई? अभ्यास से आई। अभ्यास के साथ साथ एकाग्रता मन की, उसके साथ साथ एक दृढ़ संकल्प मन का, हिम्मत ये सारे गुण उसमें थे, तभी तो वो रस्सी पर भी चल सका। दूसरा सोचेगा ना बाबा कौन चढ़ेगा, एक सेकंड में गिर जाएंगे, हम कैसे चढ़ेंगे, कैसे चलेंगे। तो क्या है राजयोग? राजयोग आत्मा व परमात्मा की अनुभूति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और ये हर एक कर सकता है। वैसे तो परमात्मा को तो हम सब याद करते हैं, जब जब दुख की घड़ी आती है तब तब ईश्वर के सिवा कौन याद आता है? आता है कोई और? हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान माफ करो, हे भगवान शांति दो, शक्ति दो। लेकिन ये शिकायत ही बनी रहती है कि मन तो लगता नहीं है, तो इसका कारण जानना जरूरी है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी बताते हैं, पर क्यों ये है कारण का जब तक पता नहीं चलता, दवाई भी कैसे मिलेगी। तो डॉक्टर उस कारण को और समझने के लिए कहेगा ये टेस्ट करा के लाओ, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, ईसीजी निकालो, सोनोग्राफी करो, न जाने क्या क्या टेस्ट आजकल होते गए हैं, तब पता चलेगा कि आखिर कारण क्या है। अब मन ईश्वर में नहीं लगता, कारण क्या है? आज कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कहता कि मेरा मन मेरे पिता में नहीं लगता, मेरी माँ में नहीं लगता, मेरे भाई में नहीं लगता। और इतना लग जाता है कई बार, अगर कोई संबंधी शरीर भी छोड़ देता है जिससे बहुत प्यार होता है, मानो अब उसको हमें भूलना है, क्योंकि याद करते रहेंगे तो दुखी होंगे, अभी वो वापस नहीं आएगा। और हमें कहा भी जाता अभी मत याद करो, भूल जाओ, हम कहते कैसे भूले, कैसे भूले, नहीं भूल सकते। तो किसी के लिए तो कहते कैसे भूले, लेकिन किसी के लिए कहते कैसे उसको याद करें, और भगवान के लिए तो सदा ही सबकी यही शिकायत है कैसे याद करें, मन तो भटकता है, मन तो भटकता है। तो अगर कारण समझ लिया तो निवारण भी सहज हो जाएगा। सबसे पहला कारण है खुद का ज्ञान, मैं कौन हूं, तो राजयोग में उसकी पहचान मिलती है। और दूसरा कारण है ईश्वर का ज्ञान, वो पहचान नहीं है, कौन है ईश्वर, कहाँ है, और वो पहचान राजयोग से मिलती है। और जब दोनों की पहचान मिल जाती है तो फिर तीसरा कारण क्या बनता है, मन इतना मैला हो चुका है, जिस मन में अनेक विकृतियां भरी पड़ी है, उस मैले मन में ईश्वर स्थान कैसे लेगा। आज आप घर में दूध उबालना चाहते हैं, बर्तन में उबालना चाहते हैं दूध को, वो इतना श्वेत चीज है, इतनी श्वेत सफेद, और आप एक मैले बर्तन में, गंदे बर्तन में डाल के उबाले, वो पीने योग्य हो सकता है? वो भी दूध भी मैला हो जाएगा। या खटाई वाले बर्तन में डाल दिया और उबाला, वो फट जाएगा। तो मन आज इतना मैला हो चुका है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सारी विकृतियां जो भरी पड़ी है मन के अंदर ही भरी पड़ी है, उसमें हम ईश्वर को स्थान देना चाहते हैं, तो पहले तो मन को साफ करना पड़ेगा। एक मंदिर में किसी मूर्ति को भी स्थान देने के लिए कितनी सफाई चाहिए। तो भगवान को अगर हम मन में स्थान देना चाहते हैं तो मन की कितनी सफाई चाहिए, सोचिए जरा। तो इसलिए उसकी सफाई के लिए हम क्या करते हैं, तो इसलिए राजयोग का भी एक अष्टांग योग है। सबसे पहला है ज्ञान योग, हम तब इंद्रियों के राजा, मन के राजा, सबके दिलों के राजा और विश्व के भी राजा बन सकते हैं, पर उसके लिए पहले ज्ञान योग। ज्ञान एक प्रकाश है, जैसे अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता है और एक दिया जलाया चारों ओर सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसलिए ज्ञान हम किसे कहते हैं, आज दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, पुस्तक भरे पड़े हैं, गूगल गुरु बन गया है, जो चाहिए इन्फॉर्मेशन गूगल से ले लो, लेकिन फिर भी हम ज्ञान के लिए भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतम गमय, हे प्रभु मुझे असत्य से निकाल, सत्य की ओर ले जाओ, अज्ञान अंधकार से निकाल, ज्ञान प्रकाश दो, मृत्यु के भय से निकाल, अमृतत्व का अनुभव कराओ। तो वो कौन सा ज्ञान, सत्य असत्य की जो पहचान देता है, अज्ञान अंधकार से दूर ले जाकर ज्ञान का प्रकाश देता है, अमृतत्व का अनुभव कराता है, वो ज्ञान। इसीलिए ज्ञान के लिए तो बहुत सारी बातें कही गई है। आज जो पढ़ाई स्कूलों कॉलेजेस में होती है उसको केवल इन्फॉर्मेशन कहेंगे, ज्ञान तो अंदर से आता है, इन्फॉर्मेशन सूचना वो सब बाहर से जाती है अंदर, और ज्ञान अंदर से आता है। इसीलिए कहते अंदर जाओ, अंदर देखो, अंदर झांको, वो ज्ञान आएगा। अब वो ज्ञान, फिर वो जब हमें ज्ञान मिला तो सब इतना सहज हो जाता है, जो शरीर को कष्ट देने की जरूरत ही नहीं है, सहज मन एकाग्र हो जाता है परमात्मा में, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है। इसलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो, क्योंकि बुद्धि मन को दिशा देती है, फिर कर्म होता है। और जब बुद्धि मन को दिशा दे और मन ईश्वर में लगे तो हर कर्म में हमारा ईश्वर से योग हो सकता है, इसलिए इसको कर्म योग भी कहते हैं। हाथों से कर्म हो, आप गाड़ी भी चला रहे हैं लेकिन मन ईश्वर में हो, इसलिए आपका जो अगला विषय है ना, स्पीड विदाउट स्ट्रेस, वो विषय है आपका। स्पीड भी हो, गाड़ी भी चला रहे लेकिन तनाव में नहीं है, और अगर तनाव में है और स्पीड भले कम हो तो भी एक्सीडेंट कर सकते हैं, पर स्पीड भी है और तनाव रहित है, मेडिटेशन में है, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। पहले से इंट्यूशंस आपको मन में आएगी कैसे चलाना है, पहले से ही आप सावधान हो जाएंगे। इसीलिए ये कर्म योग भी है, कर्म करते मन ईश्वर से लगे, और फिर ये भक्ति योग भी है, भक्ति माना प्रेम, ईश्वर से प्रेम। आज ईश्वर से प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, कुछ मिले तब हम भगवान को याद करें, कुछ चाहिए तब भगवान को याद करते, नहीं तो नहीं। और जब सच्चा प्रेम हो ईश्वर से तब संन्यास योग, संन्यास माना बुराइयों का संन्यास, बुराइयों का संन्यास, क्योंकि अगर ये बुराइयां मन में रहेगी तो ईश्वर से योग नहीं होगा, और जहां बुराइयों से संन्यास है तो समत्व योग, योग ऑफ बैलेंस। और ये जब जीवन में आए तब हम सच्चे योगी कहलाएं। अब ये तो सबके लिए, ये तो नहीं कहेंगे कि फलानों के लिए, फलाने के लिए नहीं है, इस धर्म के लिए, उस धर्म के लिए नहीं है, नहीं, सबके लिए। संसार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, धर्म जाति भाषा प्रांत देश आयु किसी भी पृष्ठभूमि का हो, वो राज्यों का अभ्यास कर सकता है। इसमें केवल क्या चाहिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनने की आवश्यकता है, वो तो हरेक में है। अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं आप या इंद्रियों की आवाज सुनते हैं? आत्मा की आवाज हमें बहुत कुछ कहती है, लेकिन कई बार हम उसे दबा देते हैं। और इंद्रियों की जो आवाज आती है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, उसी में ही हम फंस जाते हैं और फिर पश्चाताप भी करते हैं, मन खाता है ऐसे भी कहते हैं, डर भी लगता है, न जाने क्या क्या होता है, और आत्मा कमजोर होती जाती है। इसीलिए अंतर आत्मा को कैसे पहचाने, उसको कहा जाता है खुद को पहचानो। योगी कौन है, साधक कौन है? साधक अथवा योगी ये देह नहीं है, लेकिन इस देह के भीतर एक चेतन सत्ता जिसको हम आत्मा कहते हैं वो है। आत्मा के बिना ये शरीर चाहे हड्डी मांस का कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, पर आत्मा निकल गई वो मुर्दा है, वो डेड है। तो इसीलिए मनुष्य का मतलब केवल हड्डी मांस का ढांचा नहीं है, लेकिन उसके अंतर जो बीइंग पार्ट है, जो स्पिरिचुअल पार्ट है, आध्यात्मिक पार्ट है, वो मैं हूं। वो मैं आध्यात्मिक शक्ति इस प्राकृतिक शरीर में हूं, जो देख रही हूं, सुन रही हूं, बोल रही हूं, समझ रही हूं, कर्म कर रही हूं, फिर उसका असर मुझ पर हो रहा है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, ये बच्चा अपना भाग्य लेकर आया। कैसे लाया भाग्य? बच्चा तो पैदा हुआ, अभी तो 9 मास गर्भ में था, पैदा हुआ, कहाँ से लाया भाग्य? कौन लाया भाग्य? आत्मा लेकर आई। और फिर जब इंसान मरता है तब हम क्या कहते हैं, ये अपना कर्म लेकर गया, बाकी कुछ नहीं लेकर गया, बाकी तो हाथ खाली आया, हाथ खाली गया, कर्म लेकर गया जो उसने जीवन भर में कर्म किए। फिर वो चाहे कर्म थोड़े समय के थे, चाहे ज्यादा समय के थे, ये मायने नहीं रखता है कि वो कब पैदा हुआ, कब वो मरा। वैसे जब किसकी मृत्यु होती है तो तुरंत उसका चित्र भी लगाएंगे और तारीख लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। महत्व है कि जो बीच में लकीर है, वो लकीर का महत्व, उतने समय में इसने क्या किया। और अगर उसने बहुत कुछ किया तो उसके जाने के बाद एक वैक्यूम, एक वॉइड, एक खाली जगह पैदा हो जाती है कि इस जैसा फिर व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये किसके लिए कहा जाता है? केवल शरीर के लिए नहीं, शरीर तो वही पड़ा है, वो तो पंच तत्वों की चीज है, वो पंच तत्वों में वापस लौटानी है। लेकिन वो किसके कर्म थे, किसने किया, उसी को हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा और शरीर में कितना अंतर है, जैसे ड्राइवर और गाड़ी में अंतर समझ तो सकते ना। हम कहते हैं टैक्सी 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 मंगाते हैं, सामने टैक्सी खड़ी है, अब हम कितना भी चिल्लाएं टैक्सी टैक्सी पर ड्राइवर है ही नहीं, वो टैक्सी कैसे आएगी मेरे पास, ड्राइवर होना चाहिए ना। आत्मा है ही नहीं, शरीर को चाहे आप वेंटिलेटर पर, लाइफ सपोर्ट पर रखिए सालों साल, आत्मा तो निकल गई तो भी प्रकृति की शक्ति उसको मिलती रहेगी लाइफ सपोर्ट, पर वो कब तक, आत्मा तो है नहीं। इसीलिए शरीर का अपना स्थान है, आत्मा का अपना स्थान है, और दोनों के अंतर को समझने के बाद हम ये महसूस कर सकते हैं कि दोनों में से मैं कौन हूं। शरीर एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर, पर आत्मा एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो आपके पॉकेट में भी रह सकता है, एक पेन ड्राइव में आप लेके जा सकते हैं, अभी भी जो प्रोग्राम्स चलेंगे ना सारे एक पेन ड्राइव में आपको पकड़ा देंगे, इतने दिन के कार्यक्रम 3 दिन के पेन ड्राइव में सब आ जाएगा, वो सॉफ्टवेयर है। तो मैं आत्मा वो सॉफ्टवेयर हूँ जो आध्यात्मिक हूँ, और ये शरीर भौतिक है। मैं अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं अनादि हूँ और शरीर तो आदि भी है और अंत भी है। मैं सचेतन हूँ और ये शरीर प्राकृतिक है तो अचेतन है, भले उसमें जीवन है लेकिन ये विनाश को पालेगी। मैं आत्मा अपरिवर्तनशील हूँ, आत्मा न जलती है, न कटती है, न सूखती है, न गीली होती है, प्रकृति के स्पर्श से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, और प्रकृति की चीज प्रकृति के स्पर्श से परिवर्तित होती है। तो जब मैंने अपने आप को समझा तो फिर मैं क्या कहूंगी अपने लिए, मैं कौन हूं, कई कहते अच्छा ठीक है आत्मा है तो मेरे अंदर एक आत्मा है, फिर कई कहते ठीक है मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, फिर कई कहेंगे कि मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूं। अब सही वाक्य कौन सा है, सही वाक्य कौन सा है, पहला दूसरा या तीसरा, कौन सा है बताइए, कौन सा है, पहला दूसरा या तीसरा, तीसरा, क्योंकि मेरे अंदर एक आत्मा है कहना मना मैं शरीर हो गई और मेरे अंदर एक आत्मा है, फिर कहा मेरे शरीर में मेरी आत्मा है माना शरीर भी मेरे से अलग आत्मा भी मेरे से अलग, तो मैं क्या कोई तीसरी चीज हूं, पर मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूं, वो मैं कौन, मैं आत्मा कौन हूं उसको पहचानो। इतना भी पर्याप्त नहीं है कहना कि आत्मा जलती नहीं कटती नहीं सूखती नहीं गीली होती नहीं, ये तो समझ लिया क्योंकि प्रकृति के स्पर्श से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन आत्मा में सूक्ष्म परिवर्तन जरूर आता है। इसीलिए तो किसी के लिए कहेंगे ये पाप आत्मा है, किसके लिए कहेंगे ये पुण्य आत्मा है, किसके लिए कहेंगे ये धर्म आत्मा है, किसके लिए कहेंगे ये तो देवात्मा है, तो वो कैसे बनी, आत्मा तो वही है, तो अंतर में क्या चेंज है वो उसके आधार पर बनती है। क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा तीन शक्तियों का समूह है, एक है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है संस्कार। मन बुद्धि और संस्कार, मन सोचने की शक्ति है, बुद्धि समझने की शक्ति है और संस्कार वो कर्म करने की शक्ति है। क्योंकि जो भी मन सोचता है बुद्धि उसका निर्णय करती है, विवेक जिसको हम कहें, और फिर आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है और वो कर्म जो करती है आत्मा वो संस्कार बनकर आत्मा में ही निहित हो जाता है, वो पेन ड्राइव है, वो आपका सॉफ्टवेयर है, और उसी अनुसार फिर से मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, फिर कर्म होते हैं। अब इसको हमें समझना है मन क्या चीज है, हमारी विचार शक्ति, हमारा सोचना चिंतन करना कल्पना करना भावनाएं रखना, ये मन का काम है। और ये मन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन इसे बहुत ही कम पहचाना गया है। यदि मन की ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो जीवन का संचालन भी सही हो सकेगा। जैसे हम प्रकृति की शक्ति को बचाते हैं, आजकल सोलर एनर्जी के द्वारा, विंड एनर्जी के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के द्वारा, पानी के जरिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते हैं, न जाने कितने तरीकों से हम शक्ति ऊर्जा को की बचत करते हैं जो व्यर्थ जा सकती है। तो मन भी एक ऊर्जा है, ये मन के विचारों की जो ऊर्जा हमारी कितनी व्यर्थ जाती है वो आप आगे विषयों में सुनेंगे। इसलिए मन क्या है, वो आत्मा की ऊर्जा है। बहुत प्रकार के संकल्प आते हैं, ये ऊर्जा काम करती है, लेकिन सारे संकल्प को हम कर्मों में नहीं लाते हैं, बीच में बुद्धि है। इसीलिए भगवान से मन नहीं मांगा जाता, बुद्धि मांगी जाती है। अगर कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, तो हम भगवान को कहे भगवान इसको सद्बुद्धि दो, कहते सद्बुद्धि। तो बुद्धि का काम क्या है, दृढ़ता लाना, तर्क करना, परखना, विश्लेषण करना, निर्णय करना, स्वीकार करना या अस्वीकार करना, यह बुद्धि का काम है। जैसे एक छन्नी होती है, चाय हम छानते हैं, पत्ती ऊपर रह गई क्योंकि वो तो नहीं खाएंगे ना, चाय पीने की चीज है वो कप में आ गई, तो छन्नी का काम क्या है, परख करके फिर उसको अलग करना, और फिर हम बुद्धि को एक तराजू से भी भेंट कर सकते हैं। जैसे तराजू में तीन चीजें होती है, एक कांटा होता है, दूसरी डंडी होती है, कांटा एकाग ऊपर जाता है, डंडी सीधी होती है और पलड़े होते हैं। अब एकाग्रता रूपी कांटा बहुत जरूरी है अगर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है तो, इसलिए योग ध्यान ये एकाग्रता लाने के लिए बहुत जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारा कांटा एकाग्र होता है, परमात्मा के तरफ हम मन को लगा सकते हैं। और फिर डंडी सीधी माना पक्षपात रहित वृत्ति रूपी डंडी, पक्षपात रहित, सही निर्णय, सही जजमेंट, जिसको अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, वो सदा सही निर्णय देती है। और तीसरा है जीवन मूल्य रूपी वजन, अर्थात जैसे एक तरफ विवेक वजन रखते हैं, दूसरी तरफ वस्तु रखते हैं, तो विवेक शक्ति ये हमारा वजन है और अंतर आत्मा की आवाज ये हमारी बुद्धि, हमें मूल्यों का महत्व बताती है। और फिर आत्मा कर्म करती है और जो कर्म करती है वो कर्म आत्मा में ही निहित हो जाते हैं। अब मैं जो बोल रही हूँ, सुना रही हूँ, ये ऑडियो भी हो रहा है, वीडियो भी हो रहा है, वो सब रिकॉर्डेड हो जाएगा, सब रिकॉर्डेड हो जाएगा, कुछ भी खत्म नहीं होना है। इसीलिए आत्मा पर हर चीज का प्रभाव पड़ता है और वही आत्मा अपने साथ ले जाती है। इसको हम कहते हैं आत्मा अपना कर्म ले गई, संस्कार के रूप में ले गई और फिर उसी अनुसार जन्म मिलता है। तो आत्मा के जो अनादि संस्कार हैं वो तो बहुत ऊंचे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन जैसे जीवन यात्रा में चलते हैं कई प्रकार के संस्कार हमें मिलते जाते हैं। माता पिता के संस्कार मिलते हैं, साथ साथ वातावरण के संस्कार मिलते हैं, जिस जिस के संपर्क में आए उनके भी संस्कार मिलते जाते हैं। और परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि आज मनुष्य इतना अपने आप से परेशान हो चुका है क्योंकि कितने संस्कार मिक्स हो गए हैं। आत्मा अपने अनादि और अविनाशी संस्कारों को तो भूल ही गई है। तो क्या है वास्तव में आत्मा? एक ज्योति है, एक प्रकाश है, और जो आत्मा संस्कार लेकर गई वो अगले जन्म के लिए गई, और उसी के आधार पर हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे कितने होशियार होते हैं कई बातों में, जो बड़े नहीं कर सकते वो छोटे बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्म के संस्कार आत्मा लेकर के आई है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि एक व्यक्ति मृत घोषित हो चुका है लेकिन फिर जिंदा हो जाता है, और जिंदा होकर के वो बताता है कि मैं ऊपर से अपने शरीर को देख रहा था, ऑपरेशन चल रहा है, मर गया, हार्ट बीट बंद हो गई, डॉक्टर्स आपस में भी बात ही कर रहे हैं और वो आत्मा अपने शरीर को देख रही है, क्या डॉक्टर्स बोल रहे हैं वो सुन भी रही है, उसकी पत्नी बच्चे बाहर बैठे होंगे ऑपरेशन थिएटर के, वो भावनाएं उनके आगे व्यक्त भी कर रहा है वो, लेकिन उनको पता नहीं चलता। जब वापस आती है आत्मा जिंदा हो जाती है, कई बार वो बताते हैं कि हमने क्या क्या अनुभव किया। कैसे बताया, किसने देखा, शरीर आंखें तो शरीर में थी, कान तो शरीर में थे, कैसे बाहर पहुंच गया, ये आत्मा की शक्ति है। और तीसरा है सम्मोहन के द्वारा भूत या भविष्य में जाना, सम्मोहन के जरिए, जिसको आज विज्ञान की भाषा में कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR। पास्ट में सम्मोहन के जरिए कई ऐसी बातें हैं जो हम डिलीट कर सकते हैं, जो मन को बहुत सता रही है, जबकि वो इस जीवन की बातें नहीं है। हम उसको खत्म कर सकते हैं सम्मोहन के जरिए। और भविष्य, कई भविष्य वक्ताओं ने भविष्य की क्या क्या बातें की, जबकि भविष्य तो उस समय था ही नहीं। तो ये मस्तिष्क की शक्ति नहीं है, पर इस मस्तिष्क के अंदर आत्मा की शक्ति है, और वो शक्ति को पहचानना है, वो मैं हूं। तो आत्मा कहाँ है इस शरीर में? प्रकृति के मध्य चमकता है एक अजब सितारा, वो मैं आत्मा हूं। ये दो भवों के बीच में, ये जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसको त्रिकुटी भी कहते हैं, जहां तीसरा नेत्र बताते हैं, ये आत्मा का स्थान है, ये आत्मा का दसवां द्वार है। कहते नौ द्वार शरीर के होते हैं, पर ये दसवां द्वार है, ये आत्मा की सचेतना, आत्मा की जागृति, ये तीसरा नेत्र। और इस आत्मा को पहचान लिया तो आत्मा के जो असली गुण हैं, जो उसका अनादि स्वभाव है, वो भी पहचान जाएंगे। आत्मा का अनादि स्वभाव ज्ञान है। छोटे बच्चे को ये ज्ञान नहीं देना पड़ता है, सच बोलो, ये ज्ञान बच्चे को देने की जरूरत नहीं है, ये ज्ञान उसके पास है कि मुझे सच ही बोलना है। हाँ, झूठ बोलने का अज्ञान दिया जा सकता है, बेटा तुम ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना। मिसाल देते हैं ना कि एक बच्चे ने फोन उठाया और उस व्यक्ति ने जिसने फोन किया उसने कहा अपने पापा को दो, तो पापा को कहता है पापा आपके लिए फोन है। पापा पूछता है कौन है, पहले पूछो आप कौन है, कहते मैं फलाना हूँ। पापा को मिलना नहीं है, तो पापा ने कह दिया कि उसको बोलो पिताजी घर में नहीं है, तो कहता है मेरे पापा कहते हैं मैं घर में नहीं हूँ। मेरे पापा कहते हैं मैं घर में नहीं हूँ। अब उसने सच बोल दिया और पापा ने झूठ बोला, पापा तो घर में ही था। तो सच बोलना बच्चे को सिखाया नहीं जा सकता है, वो तो बोलता ही है सच, ये है ज्ञान सच बोलना। झूठ बोलना सिखाया जा सकता है। तो आत्मा का जो मूल संस्कार है वो ज्ञान है। दूसरा, जहाँ ज्ञान है ना वही पवित्रता है, आत्मा की पवित्रता। पवित्र विचार मन में जरूर आते हैं और जब हम उनको दबाते हैं तो फिर कहते हैं मन खाता है। और जहाँ पवित्रता है वहीं शांति है। शांति कोई बाहर की चीज नहीं है, मन की शांति हम कहते हैं, पर मन की शांति का मतलब है मन में पवित्र विचार। एक शक्ति है, आत्मा की शक्ति है शांति, और वो पवित्र विचार मन में लाने से ही शांति का अनुभव मन कर सकता है। और जहाँ पवित्र विचार शांति है वहीं प्रेम है। प्रेम कोई ढाई अक्षर, ये अक्षर नहीं है जो हम पढ़ते हैं, प्रेम ढाई अक्षर का शब्द है प्रेम। उसके लिए तो पोथी पढ़ लो कुछ तो भी पंडित बन जाएंगे, लेकिन प्रेम पढ़ लिया ये जरूरी नहीं है। इसलिए तो कहा न कबीर ने, पोथी पढ़त पढ़त पंडित भया न कोई, पर ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लो तो ही पंडित होई। लेकिन ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ना माना क्या? ये आत्मा को समझना, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम मांगो मत, दो, सबको दो, आपके पास ही है। और जहाँ वो आत्मिक प्रेम है वहीं आत्मिक सुख है। आत्मिक सुख, इंद्रियों का सुख अलग चीज है। आत्मिक सुख जिसको हम संतुष्टता, प्रसन्नता, अंतर का संतोष मानते हैं, वो सच्चा सुख। और जहाँ वो सुख है वही आत्मा का आनंद है। आत्मानंद, धर्मानंद, सच्चिदानंद, प्रेमानंद, शांतानंद और सबसे ऊंचा आनंद परमानंद, परमात्मा का आनंद। वो आनंद आपने पा लिया तो आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, जो आपको बाहर से शक्ति की आवश्यकता नहीं है। ये आत्मा का मनोबल काम करेगा। और ये सात मूल गुण आत्मा के ही हैं, ये सारे कोर वैल्यूज हैं जिसको कहते जीवन के मूल्य, जिनके आधार पर सारे संसार के मूल्य खड़े हैं, चाहे वो पारिवारिक मूल्य हो, चाहे वो सामाजिक मूल्य हो, चाहे आपके ट्रैवल के मूल्य हो, किसी भी व्यवसाय के मूल्य हो, ये सात मूल्यों के आधार पर सारे मूल्य हैं और ये आपके पास ही हैं। तो इनको अनुभव कैसे करेंगे? अनुभव करने लिए जागृति चाहिए, एक हल्कापन चाहिए। जैसे एक दिखाया है यहाँ सुंदर परियां, उनको पंख है। आत्मा को भी पंछी कहा जाता है, आत्म पंछी। आत्म पंछी एक सेकंड में उड़ सकता है, देर नहीं लगती है। एक कच्ची डाली पर पंछी बैठा हो, बहुत कमजोर डाली है और उस डाली को हिला रहा है, कमजोर है, लेकिन फिर भी पंछी को डर नहीं है। मनुष्य उस डाली पर झूलेगा तो डर लगेगा कहीं ये डाली टूट न जाए, लेकिन पंछी को डर नहीं है। क्यों पंछी को डर नहीं है उस डाली पर बैठते हुए भी? क्योंकि अगर डाली टूट भी गई तो उड़ जाएगा, वो गिरेगा थोड़ी, वो तो उड़ जाएगा, उसको पंख है। शरीर को तो पंख नहीं है ना, तो वो गिर जाएगा। तो आत्मा एक पंछी की तरह है, बहुत हल्की है। आत्मा का हिसाब किताब जब तक शरीर के साथ है कर्मों का, तब तक है। और कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ न कोई किसी का, न तेरा न मेरा। आत्मा का एक ही सच्चा साथी है परमात्मा, और कोई नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जब मनुष्य पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होता है कहते भगवान ने दिया, और जब मरता है तो कहते भगवान के पास गया। अब कौन आया कौन गया, शरीर तो ना आया ना गया, वो तो यही की पैदाइश है, यही खत्म करना है, हो जाएगा। फिर कहेगा कि भाई भगवान के पास गया, तो कौन गया कहेंगे, आत्मा गई। और फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। लेकिन एक कड़वा सत्य आपको बता दें, कड़वा सत्य है लेकिन ये सत्य है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी शांति का अनुभव किया ही नहीं, इतना क्रोधी था, ईर्ष्या वाला था, जलता रहता था, मारपीट, न जाने क्या क्या उसके अंदर बुराइयां थी, अब वो मर गया तो क्या उसको शांति मिली? नहीं। वो अशांति के जो संस्कार आत्मा में थे ना, वो आत्मा के साथ गए, और जहां जाएगा वहां अशांति ही होगी। इसीलिए अगर शांति चाहिए तो अभी है, और अभी नहीं है तो कभी नहीं है, ये समझ लो। और कैसे अभी नहीं है तो कभी नहीं है, हमारी सोच में है। और क्या है सोच? मैं एक आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, ये है सोच। अगर ये आपने सोचा तो आपको कोई अशांत नहीं कर सकता है। इसीलिए शांति है कितनी दूरी पर है आपके, एक सोच की दूरी पर। इट्स ओनली वन थॉट अवे, दैट्स ऑल। और वो सोच हमें मन में लानी है, इसीलिए आपसे कहलवाया ओम शांति। ओम शांति माना मैं वही हूँ, अउमर वह हूँ मैं। कौन? एक आत्मा जिसका स्वधर्म शांति है। तो मेरा मूल स्वभाव, धर्म माना स्वभाव, हर चीज का अपना स्वभाव होता है, वो उसका धर्म है। तो आत्मा का स्वधर्म शांति है, और आत्मा जिस धाम से आई है वो शांति का धाम है। इसीलिए जब हम बहुत अशांत होते हैं तो भगवान को क्या कहते हैं? हे भगवान, बस मुझे उठा लो इस दुनिया से, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है। क्यों मरने की का संकल्प आता है? जीवन तो बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि अशांत हो जाते हैं, आत्मा अपने मूल स्वभाव से दूर हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति परदेश चला जाए, बहुत दूर चला जाए अपने घर से, तो होम सिक हो जाता है, घर बहुत याद आता है, कब घर पहुंचूंगा, कब घर पहुंचूंगा। ये आत्मा को अपना घर याद आता है, क्योंकि आत्मा का जो घर है ना, वो शांति का धाम है। तो उस शांति के धाम में जाने के लिए आपको मरने की जरूरत नहीं है, आप मन से एक सेकंड में जा सकते हो उस धाम में। सूरज तक जा सकते हो तो क्या पांच तत्वों से पार नहीं जा सकते हो? एक सेकंड में जा सकते हो। अब परमात्मा ने उस धाम का भी परिचय दिया है, आत्मा का तो दिया ही, उस धाम का भी, कि हे आत्मा, तुम इस संसार में इस रंगमंच पर एक एक्टर की भांति आई हो, एक ट्रैवलर की भांति आई हो, एक राही हो, लेकिन तुम्हारा ठिकाना तो पांच तत्वों से बहुत दूर है। इसीलिए गीत भी गाते हैं, कहां तेरी मंजिल, कहां है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहां तुझको जाना। इसीलिए प्रश्न करते हैं, हम कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कहां जाना है। अब राजयोग उसका जवाब देता है, हे आत्मा, तुम इस साकार दुनिया से पार, पांच तत्वों की दुनिया से पार एक छठा तत्व है जिसको ब्रह्म महतत्व कहते हैं, उस दुनिया से आई हो। वो अखंड ज्योति का एक महतत्व है, जहां आत्माएं अपने मूल रूप में निवास करती है। उस धाम को याद करो, आत्मा वहीं की रहवासी है, और जब उस धाम में अपने मन को ले जाएंगे, हम क्या महसूस करेंगे, एक अखंड ज्योति का एक महतत्व। जैसे आकाश तत्व है, वैसे वो भी एक तत्व है, ब्रह्म महतत्व, वो छठा तत्व है, सुनहरा लाल प्रकाश, जो ये पांच तत्वों के प्रकाश से बहुत दूर है, एक सेल्फ एफल्जेंट लाइट है वो, जिसका साक्षात्कार होता है। और मैं आत्मा वहीं की रहवासी हूं, इसलिए मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। मुक्ति अर्थात जहां आत्मा देह से मुक्त है, कर्म से मुक्त है, दुख सुख से मुक्त है, वो सब यहां है साकार दुनिया में। तो मन और बुद्धि रूपी पंखों से हम उस धाम में जा सकते हैं, और क्या महसूस करें, उस अखंड ज्योति के महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूं, एक आत्मा, एक ज्योति, प्रकाश का पुंज, एक बेहद अप्रकाश की दुनिया में ये अपने आप को पहचाने और क्या अनुभव करे अपने सच्चे स्वरूप को। तो कौन हूं मैं, एक आत्मा हूं, रूह हूं। कैसा है मेरा स्वरूप, ज्योति स्वरूप। मैं आत्मा, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की स्वरूप हूं। जैसे सात रंगों में सब रंग समाए हुए हैं, सात दिनों में सारा जीवन समाया हुआ है, सात सुरों में सारा संगीत समाया हुआ है, वैसे ये सात गुणों में आत्मा के सारे मूल गुण समाए हुए हैं। और वो मैं आत्मा, मेरा टेम्पररी एड्रेस ये शरीर है, यहाँ भ्रकुटी, ये टेम्पररी एड्रेस है कर्म करने के लिए इस कर्म क्षेत्र पर, लेकिन मेरा परमानेंट एड्रेस तो पांच तत्वों से पार एक शांति का धाम है। तो मन बुद्धि से वहां जा सकते हैं। कई कहते अच्छे, अच्छा अगर वो हमारा धाम है तो हम इस संसार में क्यों आए हैं। बहुत सहज है ये समझना, हम एक्टर बन के इस संसार में आए हैं। ये संसार एक रंग मंच है, हर एक एक्टर रंग मंच पर एक्टिंग करना चाहता है, हर एक कलाकार अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए मंच चाहता है। तो आत्मा भी एक कलाकार है, आत्मा भी इस सृष्टि मंच पर अवश्य आना चाहती है कर्म करने के लिए, पर कौन से कर्म करने चाहिए ये हमें समझना है। और वो समझ लिया तो हम महसूस करेंगे कि हमें जो नहीं करना है हम उनसे न्यारा हो सकते हैं। तो कौन हूँ मैं? न मैं शरीर हूँ, न मैं अभिनय हूँ, ये रोल हूँ नहीं। मैं तो एक ज्योति बिंदु आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनेता हूँ। तो इस शरीर से न्यारा होकर अपने शरीर और चारों ओर के दृश्यों को देख रहा हूँ। ये खिड़कियां हैं आत्मा की, ये आंखें। अब चाहूं तो देखूं, नहीं चाहूं तो न देखूं। चाहूं तो कानों से सुनूं, नहीं चाहूं तो न सुनूं। चाहूं तो बोलूं, न चाहूं तो न बोलूं। न्यारा हो जाऊं और न्यारा होकर अपने नकारात्मक विचारों को रोककर केवल सकारात्मक विचार एवं भावनाओं को धारण करना है। अब ये जब हमने कर लिया, यही हमारा अभ्यास का पहला कदम है राजयोग का। ये मन में चिंतन करना, मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, देह से न्यारा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं चेतन शक्ति हूँ, मैं परम धाम का वासी हूँ, इस सृष्टि पर मेहमान हूँ, ये अंदर में चिंतन करते 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 आत्म अनुभूति करना है। तो चलिए हम इसका अभ्यास करेंगे, इस अनुभूति को लाएंगे, 5 मिनट के लिए इसका अभ्यास करेंगे। अब आपने बहुत कुछ सुना, उसको अब अंदर में समाना है। सीधा बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे, पीठ सीधी करके बैठेंगे, आंखें खुली रखें। अगर आंखें बंद होगी तो हो सकता है राजयोग के बदले पता है कौन सा योग होगा, निद्रा योग हो जाएगा। तो निद्रा योग नहीं लाना है, राजयोग करना है। रॉयल फॉर्म, सीधा बैठें। आपके हाथ में कोई चीज है तो साइड में रख दें, अपने उंगलियों को इंटरलॉक कर दें। सब बातों से न्यारा एकदम, और मैं आत्मा एक यात्री बनकर अंतर की यात्रा कर रही हूं। अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। बुद्धि मन को उत्तर दे, मन को चिंतन बुद्धि दे, मैं एक आत्मा हूं। मन बुद्धि संस्कार सहित एक चेतन शक्ति हूं। भ्रकुटी के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूं। महसूस करे अपने आप को, मैं एक चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी के मध्य विराजमान हूं। अपना ध्यान भ्रकुटी पर करें। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। इस शरीर रूपी रथ का रथवान हूं। शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर हूं। मेरा मूल स्वभाव शांति है। प्रेम है। शक्ति है। मेरे ज्ञान का नेत्र खुल चुका है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति धाम का वासी हूँ। पांच तत्वों से पार अखंड ज्योति का एक धाम। सुनहरा लाल प्रकाश, उस महतत्व का मैं वासी हूँ। इस सृष्टि पर तो केवल मेहमान बनकर आया, एक यात्री बनकर आया। अब मुझ आत्मा को वापिस जाना है अपने धाम में। मन बुद्धि के पंखों से उड़ जाएं अपने वतन में। इस आवाज की दुनिया से दूर, प्रकृति के आकर्षण से परे, एक शांति की दुनिया जहां मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूँ, स्वतंत्र हूँ। अति निर्संकल्प हूँ। हल्की हूँ। प्रकाश पुंज हूँ। मेरे चारों तरफ प्रकाश प्रकाश है। असीम शांति शांति है। कितनी निर्संकल्पता है। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव को पहचान रही हूँ। अब इसी शांति की शक्ति को स्वयं में भरपूर करते जाएं, जैसे बूंद सागर में समा जाती। मैं आत्मा भी शांति के सागर में समा रही हूँ। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मेरा मन शांत है। शीतल है, स्वच्छ है, पवित्र है। अब इसी शांति की शक्ति से भरपूर होकर वापिस लौटे, वापिस आ जाएं अपने पंच तत्वों के शरीर में, भ्रकुटि के मध्य विराजमान होकर शरीर की इंद्रियों द्वारा फिर से कर्म करें, पर एक नई सोच के साथ कि मैं आत्मा, आत्माओं से बात कर रही हूं, सब आत्माएं शांत स्वरूप है, मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूं। तो मन वचन कर्म से आप शांति प्रेम सुख सबको बांटेंगे, सबको देंगे, यही जीवन का लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति।
शांति।